विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ईरान की इस्लामी क्रांति और इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। ईरान में इस्लामी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस अवसर पर पूरे देश में विशेष उत्साह देखने में आ रहा है।
जहान जहान शोद आमद बहारान बालुत कुनान तो ऐ बरादर आजाद इंसान आमद फरान قیام ایران تا شد درخشان در هر کران لبای ایمان آمد به دوران در احتزاز
ایران میں ہر سال पहली फरवरी से ही इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ के कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वर्ष 1979 में इसी दिन इमाम खुमैनी निर्वासन का जीवन समाप्त करके फ्रांस से ईरान लौटे और 10 दिन के भीतर अर्थात 11 फरवरी को इस्लामी क्रांति सफल हो गई।
زبست جانان تازه شد روان انقلاب ایران ز نور ایمان شد بهار جان تا جهان بپاید بهار میهن جاودان بمان।
महान नेता इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरान की जनता ने अपने इतिहास का नया अध्याय शुरू किया। देश में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई और इस्लामी लोकतंत्र का नया नमूना ऐसी परिस्थितियों में दुनिया में स्थापित हुआ जब पूरी दुनिया पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉकों में विभाजित थी। यही कारण था कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही ब्लॉकों को ये बात पसंद नहीं आई और दोनों सुपर पावरों अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमों ने ईरान की इस्लामी व्यवस्था को समाप्त कर देने और इस्लामी क्रांति को विफल बना देने की भरपूर कोशिश की। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा रखने वाले विचारक और थिंक टैंक शुरू से ही रट लगाए हुए थे कि ये शासन व्यवस्था बस कुछ महीनों की मेहमान है, ये टिक नहीं पाएगी। मगर वास्तव में ये उनका मूल्यांकन नहीं बल्कि वो सपने थे जो वो शुरू से देखते आए थे। मगर फिर उन्हें भी पता चल गया कि इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक शक्तिशाली व्यवस्था है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार राशिद अहद के अनुसार ईरान की इस्लामी व्यवस्था ने बड़ी शक्तियों द्वारा फैलाए गए भ्रम को गलत साबित करते हुए दिखा दिया कि इस्लामी नियमों की छत्रछाया में एक सफल व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है।
सबसे नुमाया खुसूसियत इस इनकलाब की यह है कि ये इनकलाब उन अकदार पे आया जो अकदार इलाही, आसमानी और दीनी कहे जाते थे, जिसके यानी मगरिब जो खुद अपने अपने यहाँ ईसाइयत को तर्क कर चुका था, बहसियत मजहब को उसने देश निकाला देता तर्क कर चुका था और दुनिया को मायूस कर दिया था कि अब सियासत में, हुकूमत में मजहब का कोई रोल नहीं रहेगा। इस इनकलाब ने साबित कर दिखाया कि इलाही और इकदार की बुनियाद पर इनकलाब आ सकता है और अवाम अब भी खुदा और खुदाई निजाम से वाबिस्ता होना चाहते हैं। ये इस इनकलाब की कामयाबी। दूसरी बात ये कि दुनिया में जो साम्राज्य ताकतों ने एक जुल्म और सितम पर मबनी निजाम कायम कर दिया था, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी तहरीकें और बड़ी बड़ी जमातें ये नहीं सोचती थी कि हम उनके खिलाफ कामयाब मुजाहमत कर सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे। यहाँ तक कि जब कॉम्युनिज्म सोवियत यूनियन टूट गया तो कॉम्युनिज्म भी मायूस हो गया और कॉम्युनिज्म भी अजायब खाने में, दुनिया के अजायब खाने में चला। लेकिन इस इनकलाब ने अपने आप को मुशख्खस किया कि अमरीका जैसी और मगरिब जैसी इस्तेहसाली कुव्वतों और मुनज्जम कुव्वतों के आगे निहत थे, यानी मुकावमत और मुजाहमत करके इनकलाब को आज इस कदर तवाना कर दिया जाए कि वो एक तनावर दख्त बन जाए और इसकी तरफ दुनिया की आबादी मतवज्जो हो रही है।
यहाँ तक कि ईरान की शक्ति की बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को भी माननी पड़ी और उनको भी ये कहना पड़ा कि ईरान के साथ युद्ध के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कार्टर को इस्लामी गणतंत्र ईरान ऐसा देश लगता है जो खतरनाक है और जिसके बारे में पहले से कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
That Iran is a dangerous and unpredictable country. The best thing to do is to have a maximum diplomatic relationship. Think a military strike against Iran at this time would be completely unnecessary and counterproductive. Iran is a different proposition from what Iraq was when we attacked Iraq. It wouldn't be an easy thing to invade Iran. And where would we get the troops? We don't even have enough troops for Iraq. Where would we get them from? Right. And I don't think we'd have any other nation in the world that would join us.
जहां तक खतरनाक होने की बात है तो ईरान दुनिया के किसी भी देश के लिए खतरा साबित नहीं हुआ, बल्कि साम्राज्यवादी शक्तियों को जरूर ईरान से खतरा है, क्योंकि ईरान के नेतृत्व में क्षेत्रीय देश अमेरिका की वर्चस्ववादी नीतियों को नकारते जा रहे हैं। जिमी कार्टर का जहां तक ये मानना है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ सैनिक कार्यवाही के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो वहीं अमेरिका में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो दिन में सपने देखते हैं और ईरान की शासन व्यवस्था को बदल देने के अब भी मूर्खतापूर्ण दावे करते हैं। इसका एक उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन है। उन्होंने ईरान के विरुद्ध सक्रिय आतंकी संगठन से संबंध रखने वालों की जनसभा में अपनी ये आरजू दोहराई कि इस्लामी क्रांति का अंत हो जाए और वो वर्ष 2019 का क्रिसमस जश्न तेहरान में मनाए।
This policy review to understand what we want the outcome to be and what in the United States many of us are working toward. The outcome of the president's policy review should be to determine that the Ayatollah Khomeini's 1979 revolution will not last until its 40th birthday. I have said for over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran.
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का कहना है कि अमरीकियों ने शुरू से ही ईरान के बारे में गलत अनुमान लगाए। जॉन बोल्टन के कुछ महीने पहले के इस भाषण का हवाला देते हुए इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने अमरीकी अधिकारियों और वहां के नीति निर्धारकों की भविष्यवाणियों पर सवाल उठाया।
चंदी पीछ पर हमें नजदीकी یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره।
जिमी कार्टर जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस दौरान वो तेहरान के दौरे पर आए। उन्होंने शाही दरबार के अधिकारियों की बड़ी तारीफ की और ईरान को शांति का द्वीप कहा था, तो वो ईरान की तरफ से और उस समय के पिट्ठू ईरानी अधिकारियों की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त थे कि यहाँ से तो कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। मगर 10 दिन भी नहीं हुए थे कि पवित्र नगर कुम में जनता ने जबरदस्त आंदोलन कर दिया।
10 रोज नशे बूत के مردم قم قیام کردند، حرکت کردند علیه اون رژیم ظالم و وابسته و فاسد।
इसलिए वरिष्ठ नेता का यह कहना है कि अमेरिका और पश्चिमी अधिकारी अपने आकलन और मूल्यांकन तथा समीक्षा की दक्षता पर बहुत घमंड तो करते हैं, मगर उनकी भविष्यवाणियों का ये हाल है।
غربی‌ها خودشون، آمریکایی‌ها خودشون میبالند به قدرت محاسباتی خودشون، به قدرت تحلیل خودشون، به آینده نگری خودشون।
अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की वरिष्ठ पत्रकार सुजैन मेलोनी का मानना है कि अमरीकी संस्थाओं और अधिकारियों ने शुरू से ही ईरान के बारे में गलत अंदाजे लगाए और गलत अनुमानों के आधार पर तैयार की जाने वाली विदेश नीति का गलत नतीजा निकला।
There was no one single cause of the Iranian revolution. There were a number of different factors that helped bring about a context in which a very powerful and long-standing ally of the United States collapsed before the eyes of Washington in rapid succession. The main driver was a political one, the sense on the part of many Iranians that the Shah had begun to accumulate power in his own hands in such a way that had precluded any real participation of the traditional political elites in shaping political outcomes in Iran. Of a number of factors that helped contribute to the mobilization and to the alienation from the monarchy, policymakers simply had very little idea how weak the Shah was and how strong and robust the opposition had become. And we've consistently misperceived Iranian politics ever since then.
आज ईरान की जनता इस्लामी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मना रही है, तो ये साबित हो चुका है कि इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी की दूरदर्शिता कितनी सटीक थी और उन्होंने अपनी इसी दूरदर्शिता के आधार पर जनता की मदद से एक मजबूत इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद रखी। इमाम खुमैनी ने इस आंदोलन और इस इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा का आह्वान किया।
در خدمت شما هستند، در خدمت اسلام هستند. ما تا آخر نفس ایستادیم. من این دو سال آخر عمر را وقف شما کردم. از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم.
امام خمینی کے نردیش کے انوسار دیش کی جنتا اور پوری شاسن ویوستھا اسلامی کرانتی اور اسلامی لوکتانترک ویوستھا کی रक्षा कर रही है। नई नस्ल और नई पीढ़ी खुद को क्रांतिकारी कहती और मानती है।
ما اینجا جمع شدیم برای اینکه ثابت کنیم که دخترای انقلابی مملکتمون هنوز تموم نشدن، نسل این دخترای انقلابی هنوز ادامه دارن.
آج یہ ویوستھا پودے سے مضبوط ورکش بن چکی ہے اور دوسرے راشٹروں کے لیے بھی آدرش ثابت ہوئی ہے।